जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मेरा प्रवचन का समय 5 मिनट पहले ही समाप्त हुआ है। पौने 8 से 8:30 तक कहा। अभी अभी एक भाई मेरे पास आए थे और बोले पंडित जी आप पूरा 5 घंटे प्रवचन करना, काटना मत। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारा अंदर से लोगों की ऐसी भावना है। तो यदि आप लोग चाहें तो मैं पूरे 45 मिनट प्रवचन करूं। सीधा विषय पर आता हूं क्योंकि और बातें होती हैं तो और बातें होके रह जाती हैं। प्रवचन सार की 28वीं गाथा है। ज्ञान स्वभाव की महिमा चल रही है। ज्ञान माने कौन से ज्ञान स्वभाव की? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की नहीं, केवल ज्ञान स्वभाव की, सर्वज्ञता की बात चल रही है। और मैंने कल बहुत बातें आपको बताई थी कि ज्ञान के जानने की प्रक्रिया क्या है, ज्ञान पर को जानना उसका स्वभाव है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको पर को जानना जरूरी है, ऐसा लोगों को लगता है। जानने में आ जाए तो आ जाने देना, क्या ना आए तो ना सही, उससे हमारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। नहीं जाने तो भी नहीं बिगड़ता है और जान लें तो भी नहीं बिगड़ता है। ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि दो ग्रुप हैं हमारे मुस्लिमों में, एक को जान लें तो बिगाड़ लगता है आत्मा का, जानने में आ जाए पर तो ही अनर्थ लगता है, और एक को नहीं जाने तो अनर्थ लगता है। लेकिन एक बात तो नक्की है ना कि हम बाध्य तो नहीं हैं, क्या किसी चीज को जानने के लिए बाध्य तो नहीं है? मैं आपसे ही पूछता हूं, आपको बाध्य होना है कि नहीं होना है? सोचो, तो बाध्यता का बोझा ढोना है कि नहीं ढोना है? यदि नहीं ढोना है तो गलती से भी केवल ज्ञान को ले मत लेना, केवल ज्ञानी हो मत जाना, क्योंकि केवल ज्ञानी को अनिवार्य है। केवल ज्ञानी चाहे कि मैं नहीं जानूं इसको तो संभव नहीं है। प्रति समय उसे स्व और पर दोनों को बिल्कुल भेद से, एक एक बारीक बारीक भेद से, एक एक पर्याय से जानना उसका स्वभाव है। वो बोझा नहीं है। जिस व्यक्ति ने जानने को बोझा मान लिया उसे ज्ञान कैसे होगा? क्या बोलो आप? एक बात समझ लेना, जानना तो बहुत अच्छी चीज है, जानना तो स्वभाव है आत्मा का, और गेहों का स्वभाव ज्ञान में झलकना है। अरहंत भगवान को केवल ज्ञान हो गया है। अब उनके पिछले भवों के अनंत भव है ना, तो उन्हें तो वे जानते ही होंगे। अभी पिछले की बात करते हैं, अगले में तो अब कुछ दम नहीं रह गया है, वो एक सही होना है। जैसे एक सिद्ध भगवान केवल ज्ञान से युक्त हैं तो अनंत काल तक वैसे ही रही है। अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। लेकिन भूत काल में जितने भी उनकी माताएं होंगी, जितने भी पिता होंगे, भाई बहन होंगे, पत्नी बाल बच्चे होंगे, होंगे ना, एक एक भव में कितने कितने होते हैं, ऐसे उन अनंत भवों के कितने होंगे? वे सब ज्ञान में गेय बन रहे होंगे, सभी मोक्ष में तो नहीं पहुंच गए होंगे, इसी संसार में डोल रहे होंगे बहुत से। कोई नरक में होगा वो डंडों से पिट रहा होगा, कोई त्रिंच गति में होगा वो भूखों मर रहा होगा, कोई मनुष्य गति में होगा मां बहन होगा और उसकी इज्जत लूटी जा रही होगी। ये किन की बात चल रही है? भगवान के पिछले भवों के मां बाप भाई बहन पत्नी बाल बच्चों की, तो सब उन्हें दिखाई देते होंगे कि नहीं? हमारे एक भाई को हमारी मां के साथ एक आदमी दुर्व्यवहार कर दे तो हमारा खून खौल जाता है। उनके खून का क्या हुआ होगा, उनका ब्लड प्रेशर कितना बढ़ गया होगा? क्यों कुछ नहीं। कि ऐसी कोई गोली खा लें जिससे सब भूल जाऊं, क्यों? ऐसा भी उनके पास कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है। तो केवल ज्ञान लेने के पहले ये अच्छी तरह सोच लेना कि हमें भी अपने इस सब के वो देखने जानने होंगे। जगत में एक बहुत बड़ी मान्यता चलती है, तत्वासूत्र की अभी बात कही, उसमें ये लिखा है परस्परो ग्रह जीवानाम, कि ये जीव एक दूसरे का उपकार करते हैं। लिखा कि नहीं लिखा? और ये सूत्र हमें इतना पसंद आया कि हमने मोनो बना लिया, अपना चिन्ह बना लिया, राष्ट्रीय चिन्ह बना लिया और हजारों जगह जगह छपा छपा कर वो है ना प्रतीक उसके माथे पर लिखा दिया। क्यों? कितना प्रचार किया और कहा कि इसलिए हमको एक दूसरे की का उपकार करना चाहिए। किसी भी विद्वान को यह सोचने का समय नहीं मिला कि इस तत्वार सूत्र के इस सूत्र का अर्थ और भाग यही है कि एक दूसरे का उपकार करते हैं और करना चाहिए, उपकार करना बहुत अच्छी चीज है, यही इसका अर्थ है क्या? क्यों? मैंने गांव गांव में जाकर व्याख्यान देके कहा कि भाई ये इसका अर्थ नहीं है। कौन सुनता है नक्कार खाने में तूती की आवाज? कहा तो जरूर लेकिन लिखा नहीं था, क्योंकि झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था। सर्वमान्य जो एक चीज चल पड़ी है जिसे सबका पहले गुणस्थान से लेके और जितने गुणस्थान तक हों लोग पंचम काल में, जिन सबका समर्थन प्राप्त हो उत्तम चंद जी, उसके विरुद्ध बोलना कि कितना हाथ पर रखे औंले जैसा है। कि जिस सूत्र में ये लिखा है कि परस्परो गुरु जीवा नाम, उसी के अगल बगल में दो तीन सूत्र और हैं और उसमें ये लिखा कि पुद्गल का जीव के प्रति क्या उपकार है। क्या लिखा? पुद्गल का जीव के प्रति क्या उपकार है? तो उसने लिखा जीवित मरणोपग्रहश्च, ये जिंदा है जीव और मरता है, ये पुद्गल द्रव्य का उपकार है, जिंदा रहना भी और मरना भी, और सुख दुख सुखी होना ये भी पुद्गल का जीव के प्रति उपकार है, और दुखी होना ये भी जीव के प्रति पुद्गल का उपकार है। अब यहां सुख को भी उपकार कह रहे हैं और दुख को भी उपकार कह रहे हैं, जीवन को भी उपकार कह रहे हैं और मरण को भी उपकार कह रहे हैं, तो उपकार का अर्थ भलाई कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या अर्थ है? वहां उपकार शब्द का अर्थ भलाई होता ही नहीं है, वहां नहीं है सत्वासूत में, और सब जगह समय सार में तो है ही नहीं। समय सार तो कहता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भला बुरा कर ही नहीं सकता, करता ही नहीं है, आज तक किसी ने किया ही नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता है। निज आयु से जीवित रहे यह बात जिनवर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। निज आयु छह से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। ये कहा उन्होंने जब, तो फिर उपकार शब्द का अर्थ क्या है, जिसमें जीवन मरण सुख दुख ये भी घटित हो जाएं, तो उपकार शब्द का अर्थ हमने सीधा आंख बिना खोले ही भलाई कर दिया, और वो तो किसी को शंका है ही नहीं। डिक्शनरी में देख लो, आप कहेंगे डिक्शनरी में तो हाँ देख लो, और मिल गया उपकार माने भलाई, अब तो क्या करो। मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूं, जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मैंने उसका विषय रखा था पंडित टोडरमल व्यक्तित्व और कृतित्व, तो मेरे प्रोफेसर ने कहा कि ये गलत है, कृतित्व नहीं होता है, कर्तित्व होता है। तो उनने मेरा हेडिंग सुधारा, डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन इंदौर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, हिंदी के बहुत बड़े विद्वान, तो उन्होंने कहा एक कर्तित्व पंडित टोडरमल व्यक्तित्व और कर्तित्व, कृतित्व नहीं। तो फिर हमारे जयपुर के विद्वान थे, ये कहने लगे ये गलत है आपका। मैंने कहा हमारे प्रोफेसर ये कहते हैं ये गलत है। तो पंडित चैनसिंहदास जी बहुत बड़े विद्वान अपनी जैन समाज के थे उस समय जिंदा, एवन विद्वानों में नाम था उनका, और वे वहां जिंदा मौजूद थे। तो हम लोग उनके पास गए और हमने कहा, वो सारी कहानी बताई कि आपके शिष्य फना फना डॉक्टर हमको ये कहते हैं कि एक कर्तित्व सही है, हमारे डॉक्टर डॉक्टर देवेंद्र कुमार ये कहते हैं कर्तित्व सही है, तो क्या सही है। तो उनने कहा कर्तित्व सही है, जो हमारे डॉक्टर ने बताया था ना हमें, उनने वो बताया सही। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि यूनिवर्सिटी में तो कर्तित्व लिखा है, तो यूनिवर्सिटी कहने वो डिक्शनरी में, डिक्शनरी में तो कर्तित्व लिखा है। बोले डिक्शनरी लिखने वाले के मूर्ख नहीं होते, उनके शब्द हैं, मैं बोल रहा हूं यहां पर सामने जिनवाणी रखी है। डिक्शनरी लिखने वाले के मूर्ख नहीं होते, कैसे हो सकता है। कृति शब्द स्वयं भाववाची है, और त्वा प्रत्यय भाववाची बनाने के लिए लगाया जाता है। अब थोड़ा व्याकरण पढ़ लो एक सेकंड, क्या लगाते त्वा कर्तृत्व है ना, त्वा लगाते हैं ना, तो कहते त्वा प्रत्यय किसी शब्द को भाववाची बनाना हो तो लगाया जाता है, और कृति शब्द स्वयं भाववाची है। ये मेरी कृति है, इसमें त्वा लगाने की जरूरत नहीं है, यदि त्वा लगाना है तो कर्तित्व है, ये मेरा कर्तित्व है, समझ गए ना। तो जब व्याकरण से ही सिद्ध नहीं होता है वो, तो वो शब्द ही नहीं, कृतित्व नाम का शब्द ही नहीं होता है, वो ही गलत है। ये पंडित चैनसुखदास जी ने मेरे को बाजार में खड़े खड़े बताया, मैंने वहां खड़े ही खड़े पूछा था, वो बेचारे बहुत पंगु थे, लाठी के सहारे मुश्किल से खड़े हो पाते थे। तो ऐसी बातें हैं, जैन दर्शन की प्रसिद्ध बात है, कोई किसी का भला बुरा कुछ कर ही नहीं सकता, और करो। कल मैंने कहा था लिव एंड लेट लिव, बाइबल का वाक्य है, उसे हमने भगवान महावीर के मुख में डाल दिया, कहीं जैन आगम में है ही नहीं ऐसी। तो उपकार, तो अब ये उपकार क्या चीज है, देखो कोई भी शब्द में उप उपसर्ग कब लगता है? उपसर्ग समझते किसे बोलते हैं? मुनिराजों को होते हैं भी। अरे शब्दों में भी उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय होते हैं, विभक्तियां होती हैं, उपसर्ग होते हैं, और शब्दों में भी उपसर्ग लगते हैं। जो शब्द के आरंभ में लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। थोड़ा व्याकरण पढ़ लो क्या। तो उपकार, तो ये क्री धातु में उप जो है लगा तो ये उपसर्ग है, ये क्री धातु का उपसर्ग हुआ है। दान प्रदान तो ये प्रा उपसर्ग है, उससे अर्थ बदलता है। उसका एक परिभाषा है, उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते। उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ जबरदस्ती दूसरी जगह ले जाया जाता है। गच्छति माने जाना जाता है, अगच्छति माने आता है, अवगच्छति माने जानता है, प्रत्यागच्छति माने लौटता है। धातु एक है गम, और इतने उपसर्ग लगे कौन कौन से, आगच्छति अवगच्छति प्रत्यागच्छति, और उनसे अर्थ बदलता गया। तो उप है उपसर्ग कब लगता है, देखो नगर और उपनगर। उपनगर क्या है? नगर के जो पास हो, नगर से लगा हो, नगर ना हो, समझे ना। जयपुर नगर है और बापू नगर उपनगर है जयपुर का। उपनगर किसी का होगा, समझे ना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब इतने जितने शब्द आपको उप लगे हुए मिलते हैं उनका क्या अर्थ होता है? सोचो आप, किसी का भला बुरा करना होता है। तो क्री धातु है, डुक्री धातु है, और उसमें उप उपसर्ग लगा है, तो वो बन गया उपकार। तो नगर उपनगर है ना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसा है ऐसा है जी, उपकार, समझ गए ना। नगर उपनगर माने जो असली करता हो कार्य का। ध्यान से सुनना भाई, थोड़ा कठिन है ना, तुम तो विद्यार्थी हो, तुमने तो पढ़ा है, लेकिन इतनी जनता बैठी उसे भी सुनने दो। तुमने उपकार समझे ना, तो एक जहां शब्द लगता है उसका क्या अर्थ होता है बताना। तो कार्य माने कार्य, समझे ना। और उपकार्य तो कहते दो चीजें हो गई, एक कार्य और एक उपकार्य। तो किसी भी कार्य का दो कारण होते हैं, एक कारण और एक उपकारण। उपादान को कहते हैं कारण और निमित्त को कहते हैं उपकार। तो वहां ये अर्थ है कि एक वो उसका कारक नहीं है, मैं अपने स्वयं के प्रणमन का कर्ता स्वयं हूं और तुम मेरे प्रणमन में निमित्त हो। मुझे गुस्सा आया और मैंने गालियां बकना शुरू किया, तो उन गालियों का कर्ता उपादान कर्ता मैं हूं और तुमने उकसाया तो तुम उपकारक हो। समझ गए ना, कारक और उपकारक। समझ में आया बहन? कुछ नहीं आया तो इतना समझ लोगे कोई गहराई है, कोई रहस्य है, वो सब शास्त्र के हिसाब से है, न्याय शास्त्र के हिसाब से, व्याकरण शास्त्र के हिसाब से। मैंने ये सब बातें इस तत्वार्थ सूत्र की टीका में कम से कम 8 पेजों में लिखी हैं, एक एक बातें। लेकिन मैं नहीं सुनाऊंगा तो कोई पढ़ेगा भी नहीं, पढ़ेगा तो पढ़ता जाएगा, उसका वहां ध्यान ही केंद्रित नहीं होगा। लेकिन अब जाएगा और किताब ले जाएगा, घर पे खोल के पढ़ेगा, वो तो जिंदगी भर के लिए पक्की रकील हो जाएगी, समझ गए ना। ऐसी इसमें बहुत बातें हैं जो मैं लिखना चाहता था और लिखता इसलिए नहीं था कि जगह जगह और नए झगड़े खड़े हो जाएंगे। कौन मानेगा? अभी ऐसा पंडित आया है कह रहा उपकार ही मत करो, उपकार ही मत कर। अरे मैं बता रहा हूं उपकार का अर्थ भलाई नहीं है, वो उपकारक तो भलाई का भी होता है बुराई का भी होता है। ये कारक एक उपकारक, एक राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति, समझ रहे ना। तो ये मैं अर्थ बता रहा हूं शब्द का, और यहां ये शब्द का ये अर्थ नहीं है ये कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे 10-20 सूत्र हैं और उनमें 70 उन्हीं उन पे मैं लिखता तो मैं कम मेहनत में जल्दी लिख देता, लेकिन वही वही सूत्र पढ़ता तो फिर बहुत मेरा रहना मुश्किल था। तो मैंने कहा आदि से अंत तक लिखो, इसलिए वो टलता गया टलता गया टलता गया। डॉक्टर साहब मैंने आज से 50 साल पहले से हर साल परीक्षण में मैं तत्वा सूत्र पर प्रवचन करता था, तो हर साल ये बताता था, किसी के पास कैसेट हो तो वो आज भी सुन लेना, 50वें वर्ष पहले से मैंने ये बात बताई है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए ध्यान दिलाने के लिए मैं ये बात अभी कह रहा हूं कि उपकार शब्द के बारे में बहुत भ्रम थे और उन पर लिखो। अभी मैंने देखा कि अब जो चलाचली का काम हो गया है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और अब ये काम तो रह गया। तो मैंने दिन में रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे जब भी बैठ नहीं पाता था तो ऐसे ऐसे लेटे लेटे जैसे भी करके बना लिखा। तो पूरी बीमारी की हालत में जब मेरा 6 होमोग्लोबिन था तब में मैंने ये लिखा है उसके बीच में। आप कहोगे इससे आपको यहां लेना देना क्या है ज्ञानचंद जी, इससे ये लेना देना है कि आपको मालूम पड़े कि ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है मेरी दृष्टि में, और मैं चाहता हूं कि आप तक वो पहुंचे मेरे मरने के पहले। अब मरने मौत आ ही गई है तो उसका डर तो रहा नहीं है, अब लोग नाराज होंगे तो हो जाएंगे क्यों, अब काय का डर है, हैं? कल नहीं सही आज सही, लेकिन अब तो मैं लिखूंगा। ऐसी कई बातें उसमें हैं जिन पे हम गंभीरता से विचार करेंगे तो आपको ख्याल में आएंगी, नहीं तो आप पढ़ते जाएंगे तो अभी कुछ पता नहीं चलेगा। और मैंने वो सारा ये जो है ना कि ये तो आपने अर्थ किया, मैंने आगम से प्रमाण दे दे करके निकाले इसके पक्ष में कि यहां पर इस सूत्रकार धवला में ये किया, फलानी जगह ये किया, पंडित कैलाश चंद जी ने ये किया, पंडित फूलचंद जी ने ये किया, सबको जो पक्ष में थे विपक्ष में थे किन्ने समझा किन्ने नहीं समझा सब उसमें लिखा है। कुंद कुंद की वाणी में ऐसा ही है। अभी अपनी अपनी बात क्या चल रही थी कुंद कुंद की वाणी में, चक्षु का उदाहरण देके वो ये कह रहे हैं, गाथा पढ़ते हैं जरा पढ़ो भाई, कोई होशियार आदमी हो तो गाथा पढ़ो, मुझे आराम मिलेगा थोड़ा। शांति जी पढ़ो, शांति जी स्पीकर लो। एक गाथा और इसका पद्यानुवाद शांति जी पढ़ रहे हैं, आपके पास किताब हो तो देखना नहीं तो ध्यान से सुनना।
नानी नान सहावो अठानेय प्रदायिनानिस रूवाणि वचक्रोणं नेवन्नोन्ने सुवर्षन्ति न पवित्तो नाविट्टो नानी नेये सुरोवमि वचक्रो जानति पश्यति नियतम् अख्यातीतो जगामशेषम् रूप को जो चक्षु जाने परस्पर अप्रवेश रह क्यों आत्मज्ञान स्वभाव अन्य पदार्थ उसके गेय है।
रूप को जो चक्षु जाने परस्पर अप्रवेश रह, अब इतनी सामग्री मेरे सामने रख दे मेरे को तो समझती नहीं जी। देखो कहते हैं कि रूप को आंख देखती है, अभी ये बहस मत करना कि आंख नहीं देखती है आत्मा देखती है। जो उदाहरण आचार्य ने कुंद कुंद ने दिया है मैंने नहीं दिया है, अभी ये बहस का मुद्दा नहीं है। आंख की बात क्यों की, कान की बात क्यों नहीं की, पांच इंद्रियों की बात क्यों नहीं की। पांचों इंद्रियां तो ज्ञान में निमित्त हैं, लेकिन फर्क है। क्या फर्क है कि ये बाकी की इंद्रियां छुए बिना नहीं जानती। इस पर से इंद्रियों को ठंडा है कि गर्म, आप छू के ही बता सकते हो। कोई चीज खट्टी है कि मीठी, चख के ही बता सकते हो। छुआना पड़ेगी जबान से। ये दुर्गंध है क्या सुगंध, ये आपकी नाक में वो हवा लगनी चाहिए, तब छुएगी तब बता सकते हो। और कान में जब शब्द टकराएंगे तब आप बता सकते हो। यानी चार इंद्रियां ये प्राप्तकारी हैं। प्राप्तकारी हमारे न्याय का शब्द है, न्याय की भाषा है। प्राप्तकारी माने उस वस्तु को प्राप्त करके ही जानती हैं। आंख एक ऐसी है कि इतनी दूर कोई पदार्थ है, और भाई आपकी सफेद टोपी देखने के लिए मेरी आंख को आपके पास जाने की जरूरत नहीं है, और टोपी को भी आंख के पास आने की जरूरत नहीं है। यदि मुझे एक खट्टी है कि मीठी गोली, तो या तो गोली को मेरी जबान से आना पड़ेगा, या मेरी जबान को गोली के पास जाना पड़ेगा। समझ गए ना, बिना स्पर्श के नहीं जानेगी। लेकिन आंख ऐसी है कि वो बिना छुए जानती है, इसलिए उसे बोलते हैं चक्षु अप्राप्तकारी है। न्याय का विद्यार्थी एक मिनट में समझ जाएगा चक्षु अप्राप्तकारी का क्या मतलब है। समझे ना, आप भी समझ गए। अब तो चक्षु का उदाहरण क्यों किया, क्योंकि ये भगवान आत्मा को किसी पदार्थ को जानना हो तो उसे जानने के लिए उस पदार्थ के पास जाना नहीं पड़ता, और उस पदार्थ को भी उस आत्मा के पास आना नहीं पड़ता। यदि आना जाना पड़ता होता तो फिर अलोकाकाश का ज्ञान कभी होता ही नहीं, क्योंकि कोई आत्मा अलोकाकाश में जाती नहीं, और अलोकाकाश कभी लोकाकाश के भीतर आता नहीं। और फिर भी अलोकाकाश जाना गया कि नहीं जाना गया, इसका मतलब आत्मा का स्वभाव बाकी चार इंद्रियों जैसा प्राप्तकारी नहीं है, चक्षु जैसा अप्राप्तकारी है। कुछ अर्थ समझ में आया? देखो, थोड़ी कठिनाई तो झेलनी पड़ेगी यदि कोई गहरी बात समझनी है। ये तो मैं आपको मूल गाथा से पढ़ के बता रहा हूं ना, ये मेरी घर का नहीं है, उदाहरण भी मेरे घर का नहीं है। अब मैं पढ़ता हूं एक पंक्ति, सिर्फ एक पंक्ति पढ़ूंगा। रूप को ज्यो चक्षु जाने परस्पर अप्रविष्ट रह। परस्पर में एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते हैं, फिर भी रूप को चक्षु जान लेती है। रूप चक्षु में प्रवेश नहीं करता, और चक्षु रूप में प्रवेश नहीं करती, और वो चक्षु जान लेती है, और वो रूप जानने में आ जाता है। क्यों? क्योंकि चक्षु का स्वभाव जानने का है, और रूप का स्वभाव जानने में आने का है। समझ रहे ना, हम क्या करते हैं शास्त्र में ये बात तो आई तो है ही, आंख नहीं देखती है, आंख के पीछे आत्मा देखता है, और हमने पढ़ा भी है अध्यात्म जी हमारी पढ़ाया है, तो फटाफट वो ही गला पकड़ लेगा पंडित का। अरे ये तो उदाहरण है भाई, यदि सिद्धांत तो बाद में आएगा, तो उदाहरण तो उदाहरण तो झूठा नहीं होना चाहिए। उदाहरण कैसे झूठा दे रहा, आंख जानती ही नहीं है, जबरदस्ती बोल रहे हो। लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं, कुंद कुंद बोल रहा हूं। रानी रान साहु अट्ठाणे अप्य गाही रान से रूवाण विचक्षूणम। रूवाण विचक्षूणम, जैसे चक्षु रूप को, आप सबके रूप को मैं यहां से बैठा जान सकता हूं। ना आपको मेरे पास आने की जरूरत है, ना मुझे आपके पास जाने की जरूरत है। लेकिन यदि आप कुछ बोलते हैं तो आपकी आवाज को मेरे कान में आने की जरूरत है। अथवा मेरे कान को आपकी आवाज के पास जाने की जरूरत है, तब मैं जानूंगा। तो आत्मा का स्वभाव आंख जैसा है, कान जैसा नहीं। अब समझ रहे हैं गाथा? बिल्कुल, गाथा का अर्थ है कुंद कुंदगी का, मूल गाथा का अर्थ है। और इसमें जो मैंने पद्यानुवाद किया है वो अक्षर सा कोमा फ्लो स्टॉप से सही है। देखो, रूप को जो चक्षु जाने परस पर अप्रविष्ट रहे। अंतर कितना है? किताब तो आपके पास है ही नहीं, जो आप देखोगे वो पूज गुरुदेव श्री का प्रताप से। हम जब स्वाध्याय करने बैठते थे तो हमारे सामने शास्त्र रहता था ना, और वो एक एक पेज खोल के बताते थे और हम वो खोल के देखते थे, पढ़ते थे। तो उससे हमको धीरे धीरे स्वाध्याय करने की आदत पड़ गई। हमारे पास किताब होना जरूरी हो गया। क्यों? हमारे घरों में भी किताबें आ गई। अब हम फिर मुक्त हो गए, कुछ नहीं, हमें कोई खतरे नहीं। हम तो बराबर ऐसे हाथ करके आते हैं, ये सिनेमा देखने जा रहे हैं, जिम्मेवारी तो कुछ है ही नहीं। और कुछ नाराज मत हो जाना, हमारे अति विशिष्ट विद्वान जो विनय को इतनी अधिक महत्व देते हैं, और ये कह के कि नहीं, वो शास्त्र नीचे रहता है, वो नाभि से नीचे नहीं रहना चाहिए, नहीं तो महापाप लगेगा, तू नरक निगोद में जाएगा। तो अब वो उसके ऊपर तो आगे टिकटी रखी हो, चौकी रखी हो, क्यों? फिर भी पंडित जी तो ऊपर बैठेंगे, वो शास्त्र नीचे और पंडित जी ऊपर। कुछ लोगों ने तो ऐसी अतिशयोक्ति की है कि वो जब खड़े होकर के जब जिनवाणी स्तुति करते हैं तो शास्त्र ऐसा उठा लेते हैं, समझे ना, हर एक के साथ में। धीरे धीरे बहुत बड़ा काम हो गया तो कह न रहे बांस और न बजे बांसुरी, वो हमारे शास्त्र ही चले गए। अभी हरेक के हाथ में शास्त्र होता, उसके आगे एक चौकी होती, क्यों तो ये गुरुदेव जैसी सभा होती कि नहीं होती? उसकी महिमा, हमने कोई एक चीज खोई है कि नहीं खोई है? इतनी बड़ी सभाओं में आप नहीं कर सकते हो तो नहीं करो, लेकिन अपनी अपनी गांव की सभाओं में तो रोजाना हरेक के हाथ में शास्त्र होना ही चाहिए ना। हम तो अपने मालूम घर में जहां सोते हैं उस कमरे में एक रखते हैं, जहां बैठते हैं उस कमरे में अलग शास्त्र रखते हैं, वही जब ऑफिस में जाते हैं तो वहां भी वो हमारी किताब मिलेगी। प्रचुन की गद्दी पे जाएंगे तो वो हमारी किताब, वो पांच छह किताबें हमारी सब रखी हैं और सब फैली रहती हैं ऐसी, क्योंकि बार बार कौन पेज खोले कौन बंद करे, निशान लगा दिया और खोल खोल के रख देते हैं, फिर तो देखते हैं शास्त्र पढ़ करके दिन भर। अरे पूज गुरुदेव श्री ने की थी ना, नहीं साहब, मर्यादा भंग होती है कि नहीं? अरे भाई, मर्यादा इतनी तो नहीं मान लो कि हमारा स्वाध्याय ही संकट में पड़ जाए, वो तो दिल में होती है ना। लेकिन हम बिल्कुल पहले मालूम, हमने ऐसा भी प्रयत्न किए हैं इसी देश में कि जब शाम के टाइम मार्च के महीने में नहाकर गद्दी पे बैठना पड़ता था, मंदिर का धोती दुपट्टा पहन के जैसा पूजा करने के लिए पहनना पड़ता है ना, ऐसा मंदिर का धोती दुपट्टा पहनकर और दुपट्टे को ऐसा हाथ में लगाकर और वे हस्तलिखित साथ जिनमें कहीं कोमा नहीं, फुल स्टॉप नहीं, और आंख मीच गए, आठ अक्षर हुए और एक आड़ी लाइन खींचनी, अब हो तो और बाकी बीच में भी आड़ी लाइन खींचनी। उनकी एक परंपरा थी, क्यों थी, क्या थी, वो कभी बताऊंगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा। अब वो शास्त्र जिसका पढ़ना मुश्किल, कोई पेज में एक अक्षर की जगह खाली नहीं, यदि एक अक्षर इस पेज में लिखा जा सकता तो वो एक अब का यहां लिखा गया है, अब अगले पेज में। वो ऐसे शास्त्रों को ऐसा करके और बिल्कुल ऐसी मद्दी रोशनी काय की, वो मंदिर में होती थी, घी का दीपक जलता था और उसमें पढ़ना पड़ता था शास्त्र, एक हाथ यहां लटका रहता था, एक हाथ यहां लटका रहता था, और यहां पढ़ते थे, प्रवचन करते थे। अपने बचपन की उम्र में ऐसा भी हमने प्रवचन किए हैं, बमीना गांव है ना एक झांसी के पास, वहां करते थे। उन ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, सन 54-55 छप्पन समझ गए, त्रिगुण पद में छप्पन समझते क्या नहीं समझते, 53, 54, 55 इस सन में हमने ये किया है, 60 वर्ष हुए हैं, ज्यादा नहीं। तब से हम रेजी ना प्रवचन कर रहे हैं, ऐसा उदय है पाप का तो क्या कहें, कर्म का, कि ससुराल भी जाएं तो बिना प्रवचन से छुट्टी नहीं मिलती है, वहां भी जाके प्रवचन तो करना पड़ेगा। जैसे महिलाएं कहीं भी जाएं रोटी तो बनानी पड़ेगी उन्हें, महिलाओं को छुट्टी मिल गई अब रोटी बनाने से, क्योंकि रोटी बनाने वाली मिलने लग गई, लेकिन हमारी छुट्टी नहीं हुई। जहां जाएंगे वो प्रवचन, जहां जाएंगे प्रवचन। हम 2 घंटे को ललितपुर गए, क्यों, अपने बहन बहनों से मिलने तो प्रवचन करेंगे कि नहीं, प्रवचन करेंगे कि नहीं। 2 घंटे को सागर गए तो प्रवचन करेंगे कि नहीं, प्रवचन करेंगे कि नहीं। अरे भाई हम आए ही नहीं है यहां, ये तो रस्ते में उतर गए हैं, हम यहां सागर आए नहीं है, हम ललितपुर आए नहीं है, क्यों, ये सौभाग्य है कि दुर्भाग्य। अरे महासौभाग्य है कि जिसकी वजह से अभीक्ष ज्ञानोपयोग 24 घंटे ज्ञानोपयोग रहा और आज इस 80 वर्ष की उम्र में भी कम से कम और सब भूलने लग गए, सब काम, हाथ काम नहीं करते, पैर काम नहीं करते, कमर काम नहीं करते, अभी तक बुद्धि काम करती है, गला काम करता है। तो बहुत लोग कहते हैं कि पंडित जी अब बंद करो, अब बंद करो, कब रिटायर्ड होगी। मैंने कहा भैया जैसे रिटायर्ड तुम होना चाहते होने की बात कर रहे हो ना, रिटायर्ड होकर क्या करना है कैलाशी, स्वाध्याय करना है ना, पढ़ने पढ़ाना है ना, क्या करेंगे रिटायर्ड होके। वो तो हम 30 वर्ष की उम्र में ही हो गए, वैसे रिटायर्ड तो हम 30 वर्ष की उम्र में ही हो गए, अब कैसे रिटायर्ड करना चाहते हो ये तो बताओ, ये प्रवचन से रिटायर्ड करना चाहते हो नहीं है? जाते क्यों, बहुत तकलीफ होती है रास्ते में। मैंने कहा हम क्या बताएं, जैसे हम घर में रहते हैं, जहां जाते हैं वे मोक्षु भाई हमें उससे 10 गुने ज्यादा आराम से रखते हैं, हाथों का लिए रहते हैं, बढ़िया से बढ़िया उसमें ले जाते हैं, हाथ से ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं, गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं, फर्स्ट क्लास में ले जाते हैं, क्यों, खाने के लिए जो कहें वो जहां लाते, घर से ज्यादा आराम वहां रहता है, हमारे वहीं घर है, हम क्यों नहीं, क्या बंद करना चाहते हो बोलो, वो हम इस भव में तो बंद करेंगे नहीं, ऑटोमेटिक बंद हो जाए उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन वस्तु का स्वरूप। मैंने उत्तम चंद जी से चर्चा की थी कनाडा में, एक साथ फिर ठहरे थे, शिविर चल रहा था, मैंने कहा उत्तम चंद जी एक बात मैं आपसे बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, पूज गुरुदेव श्री चले गए और महाभाग्य से उनका जो तत्व ज्ञान है उनकी कृपा से अपन को उपलब्ध हुआ है, और आज तक हमारा और तुम्हारे बीच में कभी कोई तत्व ज्ञान सैद्धांतिक मतभेद नहीं हुआ, और जो कुछ हुआ होगा उसकी मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन सिद्धांत में जब भी मौका आया तब हम तुम दोनों एक जगह एक साथ खड़े थे, चाहे वो सुपर प्रकाशक हो और चाहे और कोई मामला हो, कहीं मतभेद नहीं हुआ। क्या हुआ कहा तो वो भी बता दो ना। अरे क्या बताना, ये तो समाज के झगड़े, समाज की राजनीति है, इससे नेताओं के काम, सेठियों के काम, उसमें हम जितना दिमाग हमने खराब किया अपना उतना ही हुआ, और तो कुछ हुआ नहीं, क्या करना अपन को इनसे। बहुत स्पष्ट शब्दों में कही, हमारी और तुम्हारी ये ड्यूटी है, यदि हम ये समझते हैं कि गुरुदेव का असली तत्व ज्ञान हमारे पास है, यदि हम छाती पीट के गौरव के साथ ये कह सकते हैं, तो हमारी ड्यूटी भी है कि इस तत्व ज्ञान को निर्मल रहना और अधिकतम आगे बढ़े जैसे प्रयत्न करना चाहिए, कोई चीज में मतभेद उसके बीच में आ या नहीं आना चाहिए। बहुत पसंद आई उन्हें हमारी बात, क्या लेना देना हमको इस समाज के झगड़ों से, क्या लेना देना इस गांव की इन बातों से, क्या देना, इनने एक कुर्सी अच्छी लगाई तुम्हें 2 लगा दी हमें 1 लगाई, इनमें समाज से समाज जाना है, समाज करेगी, समाज की ड्यूटी ये है सब विद्वानों की एवं व्यवस्था करना चाहिए, मैं तो अभी भी कहता हूं कि जैसी मुझे मिलती है ऐसी सब विद्वानों को मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिला? ये गुरुदेव की वाणी को, जिनदेव की वाणी को जिन जिन तक पहुंचाने का महान काम कर रहे हैं, और जिसमें जो क्षमता है आज उसे वो काम समाज को करा लेना चाहिए। कल ऐसा विद्वान हजारों वर्ष में नहीं मिलेगा आपको, जो भी है उसी कमी मत देखो, जो विशेषता उसमें है वो उसमें ही है। हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है। मैं उत्तम चंद नहीं बन सकता हूं, उत्तम चंद हुकुम चंद भी नहीं बन सकता। राजेंद्र राजेंद्र रहेंगे, हुकुम चंद रहेगा। राजेंद्र की भी जरूरत है और हुकुम चंद की भी जरूरत है, ख्याल में आई ना? तो ये गुरुदेव के तत्व ज्ञान को उनने तो अकेले इतना जगत के सामने रखा, और हमें तो सबको मिलके रखना है। एक काम को हम उसी जिम्मेदारी के साथ करें, ये मैंने उनसे प्रस्ताव रखा और उन्होंने बहुत हर्ष के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि भाई बहुत बढ़िया बात दादा आपने कही, अपन को यही काम करना चाहिए। ये जिनवानी है। भगवान महावीर ने समोसन में बैठकर गुरुदेव की भाषा में कहें तो 100 इंद्रों की उपस्थिति में ये दिव्यध्वनि खिरी थी। गणधर देव की उपस्थिति में जो बात कही थी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, कोई किसी का भला बुरा कर नहीं सकता, ये परम शुद्ध निश्चय नहीं की बात है। और उपकार की बात तो उपकार शब्द का वहां ये अर्थ है ही नहीं, और जहां होगा भी कहीं तो वो बिल्कुल व्यवहार का वचन है, वो उपचरत असद्भूत व्यवहार न्याय का वचन है, अनुपचरत असद्भूत व्यवहार न्याय का वचन है। क्योंकि ये भाषा बगड़ा परद्रव्य है, और परद्रव्य की क्रिया का कर्ता दूसरे द्रव्य को कहना ये उपचरित असद्भूत व्यवहार न है। उपचरित माने उपचार की बातें हैं, बस समझ लो, और असद्भूत माने ऐसा है ही नहीं, और व्यवहार माने ऐसा कहा जाता है, क्या नहीं है ना? ये बात है। तो इस तरह को हमको गंभीरता से ये तत्व ज्ञान समझना चाहिए। ये गाथा में तो क्या कह रहे हैं, जैसे चक्षु माने आंख अप्रविष्ट रहे जान करके जानती है, और जैसे वो रूप आंख में प्रवेश नहीं करता है पर आंख के द्वारा जान लिया जाता है, ऐसे ही भगवान आत्मा का ज्ञान स्वभाव है कि वो गेय के पास जाता नहीं है और गेय ज्ञान के पास आता नहीं है, है ना, जान लेता है। अब दूसरी गाथा में मैं 2 ही मिनट बोलूंगा, घबराना नहीं, लेकिन इसके साथ दूसरी गाथा का बताना जरूरी है, कल फिर भी बताऊंगा। प्रविष्ट रह अप्रविष्ट रह ज्यों चक्षु जाने रूप को, त्यों अतीन्द्रिय आत्मा भी जानता संपूर्ण जग। अब उन्होंने नीचे क्या कह दिया इसमें, ऊपर क्या कहा था ज्ञानचंद जी, अप्रविष्ट रह, और नीचे में क्या लिखा, न प्रविष्ट रहे और न अप्रविष्ट रहे। अरे प्रविष्ट और अप्रविष्ट दोनों ही कहते, तो क्या है? तो वो कहते हैं कि ये जो चक्षु ने इसको बिना प्रवेश करे ही जाना है, फिर भी लोक में व्यवहार नए से ऐसा कहा जाता है कि तेरा चेहरा तो मेरी आंखों में बस गया है, कि तेरी तो आंखें देखता हूं तो मेरे सपने में ऐसा लगता है तेरी आंखें देखता रहूं, यानी जो प्रविष्ट हो गया, समझ गया ना? तो ऐसा कहते हैं जो ज्ञान गेयों के पास जाता नहीं और गेय ज्ञान के पास आता नहीं, इसका नाम अप्रविष्ट अप्रविष्ट रहे। और अब ये कहते हैं कि उसी को ज्ञान गेयों में चला गया और गेय ज्ञान में आ गए, ऐसा भी कहा जाता है। कुछ भी कहा जाता हो लेकिन ज्ञाता और गेय का संबंध आंख जैसा है, माने वो एक दूसरे के पराधीन नहीं है, इन दो गाथाओं में कहा। अभी इसमें और कोई बात मुझे कहनी होगी तो कल कहूंगा, नहीं तो आगे की गाथा पर बढ़ जाऊंगा।